सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आइए आज हम रस के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले कक्षा में हमने अब रस के बारे में पढ़ा। आज हम रस के बारे में जाना कि किस प्रकार से रस की उत्पत्ति होती है और रस का हमारे अंतःकरण में किस प्रकार इसका उद्भव होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो हमारी हिंदी में 10 रसों की जो चर्चा की गई है, उनमें से पहला रस श्रृंगार रस के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण होता है। श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम जहां पर होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है? रति इसका स्थायी भाव है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब रति नामक स्थायी भाव के साथ संयोग होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, इनका जब रति नामक स्थायी भाव के साथ संयोग होता है, तब वहां पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। देखिए, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके दो भेद इसी प्रकार से किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका का मिलन होता है। जब नायक और नायिका का जब मिलन होता है, उस मिलन के समय जब दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार। और जब वही नायक नायिका मिलने के बाद वापस अपने अपनी जगहों पर जाना होता है, बिछुड़ना होता है, तो प्रेम युक्त बिछुड़ना, दुखी होना, प्रेम युक्त बिछड़ कर दुखी होना, वो क्या कहलाएगा? वो भी श्रृंगार रस ही कहलाएगा, लेकिन वो वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि प्रेम है उनके अंदर, लेकिन वो अब दोनों का प्रेम किस प्रकार का है? दुखपूर्ण प्रेम। प्रेम आपस में है एक दूसरे का, लेकिन अब दुखपूर्ण प्रेम है। वियोग के से उत्पन्न जो दुख है, उस प्रकार का प्रेम है, इसलिए वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। आइए हम सबसे पहले संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ते हैं। जहां नायक और नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे सीता जी रामचंद्र जी को निहार रही हैं, प्रेम भरी नजरों से उनको देख रही हैं, उसी का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, चितवन चकित चहुदिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकन ही हूँ परिहारिणी में से, अधिक स्नेहु देहि भई भोरी, सूरद ससिह जन चितव चकोरी, सरद ससिह जन चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है, वही रति स्थायी भाव है। जो सीता राम को प्रेम भाव से निहार रही है, देख रही है, वही इसका क्या है? रति नामक स्थायी भाव है। प्रेम पूर्वक निहारना, ये रति नामक स्थायी भाव है। और राम और सीता ये जो है, दोनों नायक और नायिका हैं, इस रस में ये स्थायी आलंबन है। और जो बाह्य वातावरण है, लता आदि, ये उद्दीपन विभाव है। देह का भारी हो जाना, देखते देखते शरीर का भारी हो जाना आदि, ये सब क्या है? अनुभव है। क्या फील होगा उसको? क्या महसूस अनुभव किया? देह इत्यादि भारी हो जाना इत्यादि, हर्ष उत्सुकता आदि, राम को देखकर सीता के मन में हर्ष उत्सुकता आदि उत्पन्न हो रहा है, वो संचारी भाव है। अतः यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार के बाद अब हम आपस में देखते हैं, जब आपस में नायक और नायिका जब बिछुड़ते हैं, आपस में अलग होते हैं, तब वहां पर जो प्रेम युक्त जो दुख उत्पन्न होता है, उसे हम प्रलंब श्रृंगार कहते हैं। जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहां वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। जैसे सीता जी का जब हरण हो जाता है, सीता जी को जब रावण हरण करके ले जाता है तो उनके वियोग में राम इधर उधर भटकते फिरते हैं और उस समय उनकी क्या स्थिति है इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी अपने काव्य पंक्तियों में लिखते हैं, कहु राम वियोग तब सीता मोह कह सकल भय विपरीता, नूतन किस लय मनहु कृषानु काल निशा समय निश शशि भानु, कुवलर विपिन कुंत बन सरिषा वारिद तपत तेल जनु बरिषा, कहूं ते कछु दुख घटी होई काहे कहूं यह जान न कोई। यहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह अति स्थायी भाव, राम आश्रय है और सीता आलंबन है, राम आश्रय है यहाँ पर और सीता आलंबन है उस रस को उत्पन्न करने वाले। प्राकृतिक दृश्य जितने भी हैं वो सारे उद्दीपन विभाव हैं और कंप कांपना पुलकना और अश्रु इत्यादि ये सब क्या है, अनुभव है, ये अनुभव कर रहा है हमारे शरीर कांप जाना पुल और एकदम से अश्रु आ जाना, ये हम उसको जान करके दुख के घड़ी को जान करके अनुभव कर रहे हैं। विषाद ग्लानि चिंता दीनता आदि सारे क्या है, ये सारे संचारी भाव है। अतः यहाँ पर क्या आंसर रस होगा, इन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर वियोग श्रृंगार नामक रस की उत्पत्ति होगी। आगे हास्य रस, हास्य रस की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है, विकृत वेशभूषा क्रियाकलाप चेष्टा या वाणी देख सुनकर मन में जो विनोद वन मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, विनोद जन जो उल्लास है हर्ष है उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है और ये रस हमारे अंदर पूर्व में ही हमारे स्थायी भाव के रूप में पूर्व में अंतःकरण में विद्यमान होता है, बस इसको माहौल को देखकर इस रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण इसका देखिए, जे ही दिस बैठे नारद फूली सो दिस ते न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही देख दशा हर गिन मुस्काही। नारद जी के बारे में चर्चा की गई है कि यह स्थायी भाव हास है, आलंबन वानर रूप में नारद जी हैं, जो बंदर के रूप में जो नारद जी बैठे हैं, आश्रय क्या है दर्शक हैं और श्रोता है उद्दीपन विभाव, जो सुन रहे हैं वो उद्दीपन विभाव है। नारद जी की आंगिक चेष्टा है जैसे उकसना अकुलाना बार बार स्थान बदलकर बैठना, ये सब क्या कहलाएंगे, ये अनुभव कहलाएंगे। हरिगण एवं अन्य दर्शक की हंसी और संचारी भाव हर्ष चपलता उत्सुकता आदि है। अतः यहाँ पर कौन सा रस होगा, इस प्रकार से यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है कि नारद जी एक बंदर के रूप में वानर के रूप में, नारद जी एक आलंबन विभाव है और नारद जी का बार बार इधर उधर आंगिक चेष्टा जिसे उकसाना अकुलाना बार बार स्थान देकर बैठना, जिसको देखकर दर्शक हंसी आ रही है, दर्शकों को नारद जी की इन क्रियाओं पर देखकर हंसी आ रही है और इस प्रकार से हर्ष चपलता उत्सुकता आदि यहाँ पर क्या है, सारे संचारी भाव उत्पन्न होकर यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला है रस है करुण रस। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है, यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धना भाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमदर्दी आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है जिसे व्यक्ति के परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, जिसको हम चाहते हैं उस चीज के अगर हमें नुकसान पहुंच जाता है, अनिष्ट वस्तु का लाभ, यदि हम जिस चीज को नहीं चाहते और वो हमारे जीवन में आ जाए, कोई अनिष्ट वस्तु जो हम नहीं चाहते वो हो जाए, प्रिय का चिर वियोग, मैंने बताया था वहां पर विप्रलंब श्रृंगार में, विप्रलंब श्रृंगार में क्या होता है, वापस मिलने की अपेक्षा होती है, आशा होती है, इसलिए वहां पर विप्रलंब श्रृंगार है, जहां पर मिलने की आशा ही न हो, जब दोबारा से मिलन ही नहीं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद दोबारा उससे मिलन ही नहीं होता, तो वहां पर विप्रलंब श्रृंगार न होकर वहां पर करुण रस हो जाएगा। प्रिय का चिर वियोग, लंबे समय तक वियोग, दूर रहना अर्थात दूर हो जाना, अर्थ की हानि धन की हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि हो वहाँ करुण रस होता है। और करुण रस के स्थायी भाव क्या है, शोक है। उदाहरण देखिए, शोक विकल एव रोव ही रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रहारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, उस समय रानियां, जो उनकी तीन रानियां थी, वो किस प्रकार का अनुभव कर रही हैं, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ स्थाई भाव शोक है, दशरथ आलंबन है, ठीक है, रानियां आश्रय हैं, राजा का रूप तेजबल आदि उद्दीपन, रोना विलाप करना, अनुभव और स्मृति मोह उद्वेग कंप आदि सारे संचारी भाव हैं। अतः यहाँ राजा का वापस न आना, यहाँ राजा का हमेशा हमेशा के लिए दशरथ का चले जाना, यहाँ पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति करता है। इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार वहां पर होता है जहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए न चाहने वाली चीज का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाना, और हम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। ऐसी अवस्था में जब शोक नामक स्थायी भाव का वियोग विभाव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, जैसे आपने अभी इसका उदाहरण देखा। वीर रस, वीर रस किसे कहते हैं, जहां पर वीर रस शब्द से सुनकर आपको लग रहा हो जहां पर वीरता का प्रदर्शन हो वहां पर वीर रस होता है। देखिए, जैसे युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव को जागृत करने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, आस्वादन योग हो जाए, और आस्वादन कौन करता है, हमारा अंतःकरण आस्वादन करता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ वीर रस से निहित कुछ पंक्तियां हैं, वीर रस से उत्प्रेरित कुछ पंक्तियां हैं, जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े है, वीर क्षत्रिय बालकों का वीर भोजन कर अड़े। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जब उनके बड़े पिता युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ने में अभिमन्यु सिर्फ आप ही सक्षम है, तो अभिमन्यु अपने इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को बड़े सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने ताऊ जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, पिता श्री युधिष्ठिर से कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ हे सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े है, वीर क्षत्रिय बालकों का वीर भेदन कर अड़े। यहाँ इनके इन भावों में क्या है, जोश है, उत्साह है, इसलिए यह उत्साह स्थायी भाव है। यहाँ पर आश्रय अभिमन्यु, युद्ध आलंबन, द्रोण आदि कौरव पक्ष, अनुभव अभिमन्यु के वचन और संचारी भाव, गर्व हर्ष उत्सुकता कंप मद आवेग उन्माद, ये सारे क्या है, ये सारे संचारी भाव है, और इन सब के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से अभिमन्यु के इन वचनों में वीर रस है। आइए अब आगे जानते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जब गुस्सा आता है क्रोध के भाव में रौद्र नामक स्थायी भाव होता है। रौद्र नामक स्थायी भाव का जब विभाव और अनुभव या संचारी भावों के साथ संयोग होता है, क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है और जब परिपुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब वह रौद्र रस उत्पन्न होता है। जैसे माखे लखन कुटिल भई भौं है, रदपट फरकट नयन रिसौं है, कहीं ना सकत रघुवीर डर, लागे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। यह स्थायी भाव क्रोध है। आश्रय लक्ष्मण है, आलंबन जनक के वचन, उद्दीपन जनक के वचनों की कठोरता, अनुभव भावे तिरछी होना, होंठ फड़कना, नेत्रों का रिशवमय होना, संचारी भाव है, अम्मा सुग्रता कंप आदि यहाँ पर संचारी भाव है। अतः यहाँ पर ये सब मिलाकर विभाव अनुभव और संचारी भावों को मिलकर यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर ये जो आपको उदाहरण दिया गया है वह रौद्र रस की परिपुष्टि करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपने इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।